ही सम्यक दर्शन आदि और जीवादि पदार्थों को जाना जा सकता है। तो असल में नए है क्या चीज, सापेक्ष कथन करने की शैली का नाम नए है। प्रमाण के द्वारा सिर्फ जाना जाता है, नए के द्वारा उसका कथन करना संभव होता है। नए मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, जो द्रव्य को विषय बनाने वाला नए है वो द्रव्यार्थिक नए कहलाता है, और जो पर्याय को विषय बनाता है वो पर्यायार्थिक नए। दूसरे तरह से अध्यात्म की दृष्टि से भी नए को दो भागों में विभाजित किया गया, निश्चय नए और व्यवहार नए। जो अभेद रूप से वस्तु का कथन करता है उसे निश्चय नहीं कहते, और जो भेद रूप से वस्तु का कथन करता है उससे व्यवहार नहीं कहते। ये अध्यात्म की भाषा है। इनके उदाहरण भी हैं, जैसे कि जीव और उसका ज्ञान, इन दोनों को अगर अभेद रूप से कहें तो भी कह सकते हैं, और भेद रूप से कहना चाहें तो भेद रूप से भी कह सकते हैं कि ज्ञान और जीव अलग अलग है। तो निश्चय ने हमेशा अभेद को ग्रहण करता है, तो इसमें जीव का ज्ञान और जीव स्वयं दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही है, जैसे अग्नि और उसकी उष्णता। तो निश्चय ने की दृष्टि से दोनों एक ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि एक दृष्टिकोण है वस्तु को देखने का, और व्यवहार नय की दृष्टि से दोनों अंतर मालूम करेगा कि हाँ ठीक है, केवल ज्ञान के द्वारा जीव जानता है, जीव केवल ज्ञान रूप है, ये तो अभेद दृष्टि हो गई, और जीव केवल ज्ञान के द्वारा जानता है ये भेद दृष्टि है। इस तरह से अध्यात्म में निश्चय और व्यवहार का कथन चलता है, उसके द्वारा भी जो है वस्तु को जाना जाता है। पर यहाँ जो सिद्धांत में नए हैं वो तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए हैं। जब हम द्रव्य को विषय बनाते हैं, जो दृष्टिकोण द्रव्य को विषय बनाते हैं वो द्रव्यार्थिक है, और जो दृष्टिकोण जिस दृष्टिकोण से हम वस्तु की पर्यायों को जानते हैं वो दृष्टिकोण हमारा पर्यायार्थिक है। असल में दोनों है, एक तरह का दृष्टिकोण है, दोनों के द्वारा वस्तु के अंश को ही जाना जाता है, पूर्ण वस्तु को नए के द्वारा नहीं जाना। पूर्ण वस्तु तो प्रमाण के द्वारा कही जाती है, उस पूर्ण के एक एक अंश को जो सापेक्ष रूप से कहता है वो नए कहलाता है। इसलिए कहीं कहीं पर वक्ता या ज्ञाता के अभिप्राय का नाम भी नए कहा गया। इस तरह से ये नयों के बारे में यहां पर, लेकिन नयों को और अधिक विभाजित किया गया, निगम संग्रह और व्यवहार नए, ये द्रव्यार्थिक नए कहलाते हैं, क्योंकि इसका विषय जो है अभेद होता है। और विजु सूत्र शब्द संग्रह और एवं भूत नए, ये पर्यायार्थिक नए के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमने द्रव्यार्थक और पर्यायार्थक के अंतर्गत इन सातों नयों को रख करके और एक अलग से क्लासिफिकेशन दे दिया है। अब इन सबके अर्थ अपने समझे, निगम नए किसे कहते हैं, तो निगम नए वो कहलाता है जो संकल्प मात्र को ग्रहण करके और बात अपनी कहता है। जैसे यह कि ऐसा ले लीजिएगा कि जो अनिष्पन्न वस्तु में भी निष्पन्न वक्त कथन करता है वो निगम नए कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति लकड़ी वगैरह लेकर के जा रहा है और उससे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो ले तो वो लकड़ी जा रहा है लेकिन कहेगा कि मैं भात बना रहा हूं। हाँ, चावल बीन रहा है और उसको मैं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो चावल भात बना रहा। अभी उसने कार्य हुआ नहीं है पूर्ण, लेकिन कार्य की शुरुआत भी उस संकल्प मात्र है कि वो जैसे कपड़ों को प्रेस करवाने जा रहा है और पूछे कहाँ जा रहे हैं आप, तो ये नहीं कहेगा कि देवी के यहाँ जा रहे हैं, वो कहेंगे बम्बई जा रहे हैं। तो संकल्प जिस चीज का है उसको ग्रहण करता है, ये निगम नए कहना चाहिए। दूसरा नए जो है संग्रह नए है, एक ही जाति की अनेक वस्तुओं को या उनकी पर्यायों को एक रूप में संग्रह करके जानने वाला जो नए है वो संग्रह नए कहना चाहिए। अब जैसे जीव कहा सामान्य रूप से, तो जीव में अब संसारी और मुक्त दोनों जीव आ गए, और संसारी और मुक्त में जो मुक्त जीव है वे भी अरहंत और सिद्ध हैं दोनों, वो भी आ गए। अब ये सब चीजें इसमें अलग अलग नहीं कह रहा है, वो जीव कहने से त्रस और स्थावर भी आ गए, प्रेसमैन साहब आ गए जितने मूर्ति हैं, स्थावर में साहब आ गए जितने मूर्ति हैं, इस तरह के लिए जीव कह के सारे जीवों का संग्रह करें, जैसे सेना के लिए तो सेना तो उसमें सब होती है, तीन तरह की सेना है तो वो सब आ जाएगी। जैसे जंगल के लिए तो जंगल अकेले में तो बहुत प्रकार के आम के पेड़ भी हैं और बबूल के पेड़ भी हैं, सब तरह के पेड़, तो सबका संग्रह। एक ही जाति वृक्ष है माने अब बस सब एक, सब एक में शामिल। आचार्य श्री इसको ऐसा कहते हैं कि जैसे किसी दुकानदार के यहाँ बिल्टी आई, अब उससे कि क्या आया आपके यहाँ, तो बिल्टी आई। अब बिल्टी में से सामान तो बाद में निकलेगा, पर उस बिल्टी में बहुत सारा सामान बहुत प्रकार का है, तो वो नहीं कह रहा है, वो तो कह रहा है सिर्फ बिल्टी आई। इस तरह से ये संग्रह है एक ही जाति की अनेक वस्तुओं को एक साथ ग्रहण करके और कथन करते हैं। संग्रह के द्वारा जो हम वस्तुओं को ग्रहण करते हैं उनका विधिपूर्वक भेद करते जाना ये व्यवहार न्याय का कारण है, उसे व्यवहार न्याय। जिस दृष्टि के द्वारा हम संग्रह के द्वारा ग्रहण की वस्तुओं में भेद डाल के कथन करते हैं वो दृष्टिकोण व्यवहार न्याय का दृष्टिकोण है। जैसे कि जीव कहा तो भाई इतने समझ में नहीं आए, आप बताइए संसारी अमुक्त किसके बारे में आप कह रहे हैं, से भेद शुरू हो और प्रॉपर होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अटेंडम कुछ भी आप भेद कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि संसारी और मुक्त, फिर मुक्त में भी जो है सशरीरी और अशरीरी तो अढ़ंत और सिद्ध हो गए, और इधर भी जो है संसारी में भी त्रस और स्थावर, और त्रस में भी दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री या विकलेंद्री और सकलेंद्री, और स्थावर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ऐसे भेद कर दिए। ये प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन है उसको दृष्टिगत करने वाला उसकी दृष्टि इस बात पर है कि और कितना क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इस तरह ये व्यवहार में का विषय है, भूत और भावी पर्यायों को छोड़कर जो मात्र वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है वो ऋजु सूत्र है। ऋजु के मायने होता सरल, ऋजु के मायने होता वर्तमान, जो मौजूद है, तो मौजूद पर्याय का कोई भी मनुष्य, जैसे आपने कहा कि जीव है, तो जीव में भाई मार्की जीव है कि देव है कि मनुष्य है कि तिरंश है, तो आपने कहा मनुष्य। अब लेकिन मनुष्य में भी वो उसकी वर्तमान जो पर्याय है उस मनुष्य पर्याय को ही ग्रहण करेगा, पहले वो देव रहा होगा बाद को फिर वो तिरंश होने वाला होगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो कहता है कि हम तो सिर्फ वर्तमान में जो मौजूद उस जीव की स्थिति है उसका ही कथन कर पाएंगे, इसके आगे पीछे काम नहीं कर पाएंगे। व्यवहार नए में आगे पीछे का किया जा सकता था, लेकिन उससे सूक्ष्म हो गया ऋजु सूत्र में। वो कहता है कि वर्तमान पर्याय को ही हम कह पाएंगे, जो परिणाम वर्तमान पर्याय में हो रहा है उसी को कह पाएंगे, बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक की सारी बातें, लेकिन एक ही पर्याय की, पूर्व पर्याय या आगामी पर्याय के बारे में वो कथन नहीं पाएंगे। ये ऋजु सूत्र नए कहलाता है। प्रतीक्षण होने वाली पर्याय का कथन करने वाला तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र है, और एक व्यंजन पर्याय जो 60-70 साल तक वर्ष की चलती है उस पूरे को ग्रहण करने वाला वो कहलाएगा स्थूल ऋजु सूत्र। ऐसे दो भेद भी ऋजु सूत्र नए के कर दिए गए। अब ये थोड़ा सा कठिन है शब्द नए, ये विभिन्न प्रकार की लिंग संख्या साधन इन सबके व्यभिचार को दूर करने वाले वचन या कि ज्ञान का नाम जो है वो शब्द नए कहा गया। इनका ये है कि अगर लिंग का भेद हो गया तो फिर वो दो अलग अलग शब्द हो गए, उनका उसी हिसाब से उपयोग करना चाहिए। अपन जो वचन बोलते हैं उसमें जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, अब जैसे इसमें उदाहरण है आपह और जल का, आप भी जल को कहते हैं और जल, लेकिन वो कहता है कि ठीक है ये हमें मंजूर है कि एकार्थवाची शब्द है, लेकिन उनके दोनों के अलग अलग जेंडर हैं या अलग अलग वचन है, एक वचन बहुवचन, तो उनका उपयोग भी अलग, दारा और स्त्री तो दोनों अलग अलग हैं, हालांकि एक ही शब्द के वाच्य है। वो इस तरह से एकार्थवाची शब्दों को ग्रहण तो करता है पर उनके लिंग इत्यादि और वचन इत्यादि को ध्यान में रखकर के ग्रहण करता है। ये थोड़ा सा समझ, ये थोड़ा ऐसा लगता है कि इससे क्या संबंध है, लेकिन ये व्यवहार में अपन जो वस्तु को जानने के लिए करते हैं उनको तो इसी तरह से जानते हैं, अलग अलग शब्द और अलग अलग वचन में है, एक वचन कहते हैं कि समरूप है वो है जो कि लिंग आदि का भेद न होने पर भी शब्द के भेद से अर्थ का भेद माना जाता है। वो कहता है कि एक ही जो शब्द के तो एक ही अर्थ को आप तीन शब्दों से कह रहे हैं, ये सही बात नहीं है। आप एक शब्द का एक ही अप्रोप्रिएट जो मीनिंग है वही आप एक्सेप्ट करिए और थोड़ा सा बारीक हो जाता है उसमें। वो तो सिनोनिम्स को एक्सेप्ट कर रहा था पर्यायवाची शब्दों को। ये कहता है कि नहीं, जो जिस अर्थ में रंग है प्रसिद्ध है उसका वही अर्थ निकालो। वो शब्द गमन के अर्थ में भी आता है, चलने के अर्थ में भी, और गो शब्द जानने के अर्थ में भी आता है। लेकिन गो शब्द गाय के लिए रंग है, इसलिए आप गो शब्द का वही अर्थ निकालिए ना जो जिसके लिए रंग है। इंद्र का अर्थ, अब इंद्र का अर्थ तो देवों का स्वामी है, लेकिन वहां इंद्र का अर्थ वो है जो कि आनंद करता हो, तो आनंद करने वाला अर्थ होगा। शक्र भी इंद्र का सिनोनिम है, लेकिन शक्र तो वो है जो शक्तिशाली होता है, तो आप शक्र का अर्थ शक्तिशाली निकालो। आप इंद्र और शक्र को एक एक जैसा कैसे समझते हैं? इस तरह एक ही तरह के पर्यायवाची शब्दों में वो शब्द के भेद से अर्थ का भेद स्वीकार एप्रोप्रिएट मीनिंग निकाल। उसके बाद और सूक्ष्म आ जाता है तो फिर वो एवं अभृत में कहलाता है, जिसमें जिस शब्द का जिस क्रिया रूप अर्थ हो उसी क्रिया रूप वो उसको स्वीकार करता है। जैसे आपने फसल को पुजारी कहा तो आप पुजारी उसी समय कहिए जब वो पूजा कर रहा है, जब वो खाना खा रहा है तब उसको पुजारी लगती है। जब इंद्र अभिषेक कर रहा है तो उसको आनंद नहीं दे सकते, जब वो आनंद में दे रहा है और सभा में बैठा हुआ अपने आश्रय के साथ तो उसको आनंद कर लिया। मतलब वो उस इंद्र भी उस पर ऐसे युक्त होने से युक्त तब जो अपन करते हैं इसी तरह से हम कई जगह ऐसा उपयोग भी करते हैं। जब उस पर्याय से युक्त व्यक्ति को पुजारी को पूजा करने वाले को देख के अपन फौरन कर देंगे पुजारी, लेकिन दुकान पर बैठा हुआ है वो व्यक्ति जो उसको अपन को दुकान में नहीं करते हैं उसको पुजारी थोड़ी कहेंगे, तो कई बार पुजारी कह भी देंगे व्यक्ति अगर समझ पाएगा तो अपन कहेंगे पुजारी जी होंगे, तो वो फिर समझ में क्योंकि वो पुजारी शब्द ग्रहण कर रहे हैं इसलिए अपन उससे समझ नहीं रखते हैं। इस तरह से ये सब जानने के तरीके हैं। सातों ढंग से जाना जा सकता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि सातों का विषय है सूख पर्वत बनाना। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा का संकल्प कर लेगा ना तो उसको अपने यात्री नहीं, उन्हें एक नए का दृष्टिकोण। दूसरे कहते हैं कि अभी कैसे जब वो यात्रा के लिए सामान इकट्ठा करके तैयार हो जाए तो हम लड़की जाएंगे, तो वो संग्रह है सामान इकट्ठा करके उसकी यात्रा की तो वो यात्री। तीसरा वाला है कहते हैं कि जब तक वो सामान लेके घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर की बात ही नहीं, घर में बैठे व्यक्ति को कौन यात्री कहेगा, तो बाहर एक है कि वो बाहर निकल गया तो बाहर जाते हुए स्टेशन की तरफ जाते हुए व्यक्ति को आप यात्री कहेंगे। चौथा वाला कहता है कि नहीं, आपके वर्तमान पर्याय को देखेंगे कि आप वहां स्टेशन पर खड़े हैं क्या तो यात्री कहलाएंगे, तो स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को अब वो यात्री कहलाएंगे, ये भी सूत्र है। फिर आगे वाला है कहता है नहीं, शब्द का आप ठीक उपयोग करिएगा, यात्री शब्द को नहीं जिसके पास टिकट मिली थी तो आपने टिकट ले ली तब उसको यात्री कहेंगे। फिर अगले वाला है कहता है और सूक्ष्म रूप से कि टिकट लेकर के भी क्या भरोसा वापस लौट सकते हैं, तो ट्रेन में बैठा हुआ समविरूप ट्रेन में बैठे वाले को यात्री कहेंगे। एवं भरत कहते हैं जब तक ट्रेन में चलेगी यात्री कैसे कहेंगे, तो ट्रेन चलने पर फिर उसको यात्री कहता। देखिए कहां से शुरू हुआ था कि हमने जब उसने संकल्प किया था तब भी यात्री कहा था, वो भी सही था, हमारा दृष्टिकोण था, और जब यात्रा करने लगा तब यात्री कह रहे हैं, वो भी दृष्टिकोण से उसको सत्य अलग अलग बताया था ना। जब अलग चीज है सात अस्थि नास्ति, ये सात नए नए सत्यभंगी भी नए का ही एक कथन करने का वो है तरीका है, पर वो थोड़ा सा देखो इस तरह ये यहाँ पर चर्चा हुई। अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। औपशमीक्षायको भाव विश्वस्य जीवस्य सतत महोदयित पारिणाम पूछा। औपशमीक्षायक मिश्र औदारिक अवैध और पारिणामिक, तो ये पांच जीव के भाव हैं। स्वतत्व है अर्थात जीव के अलावा अन्य किसी में नहीं पाए, इसलिए इन्हें जीवस स्वतत्व, जीव के ये स्वतत्व है अर्थात अन्य किसी में नहीं पाए जाते हैं ये पांचों भाव। और पानी मिला हुआ रख देता है। उसी तरह पापों में जो कर्म है वो विशेष पुरुषार्थ के द्वारा कुछ समय के लिए हृदय से रोक दिए जाते हैं, हृदय में नहीं आने दिया जाता है। तो इतनी देर के लिए जो आत्मा की प्रणाम में निर्मलता आती है वो भाव औपचय भाव
कितना
औपचारिक संबंध दर्शन, वही कौन सा भाव है? वो औपचारिक और समस्त हानिकरण का उपचार होने से जो औपचारिक चारित्र उत्पन्न होता है वह भी औपचारिक भाव है। इसीलिए औपचारिक समय और औपचारिक चारित्र, हाँ, और सिर्फ एक वर्णन कर्म है जिसका ही उपचार होता है और किसी भी कर्म का उपचार नहीं होता है। तमाम कर्मों के दर्शन होने का अगर उपचार होता है तो क्या उत्पन्न होगा? संगीत दर्शन। और चारित्र मोहनी का उपशम होगा तो चारित्र उत्पन्न होगा। इसलिए उपशम के द्वारा दो ही चीजें उत्पन्न होती है, संगीत दर्शन और संगीत चारित्र। अब इसको उपशम संगीत कहते हैं और इसको उपशम चारित्र कहते हैं। इसलिए दो ही भेद किए गए ज्ञान दर्शन दान भाव भेदों को ज्ञानी का शायक भाव के पांच भेद, जिसमें शायक ज्ञान वह केवल ज्ञान के लिए, शायक दर्शन वह केवल दर्शन, शायक दान, शायक लाभ, शायक भोग, शायक उद्भोग, शायक भूल, और चार शब्द से सूत्र में शायक संयुक्त और शायक चारित्र कहना जानते हैं। इस तरह से ये और समस्त ज्ञान कर्म कर्म के नष्ट हो जाने पर जो आत्मा है ज्ञान की प्राप्ति होती है वो शायक ज्ञान है, और समस्त दर्शनावरण कर्म के क्षय हो जाने पर जो भाव आत्मा में उत्पन्न होता है वो शायक दर्शन या केवल दर्शन कहलाता है। इसी तरह से समस्त दानांतराय कर्म का, समस्त लाभांतराय कर्म का, समस्त भोगांतराय कर्म का, समस्त उपभोगांतराय कर्म का और समस्त वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो जाने पर क्रम से शायक दान, शायक लाभ, शायक भोग, शायक उपभोग और शायक वीर उत्पन्न होता है, और जो सात प्रकृतियों का क्षय होने पर संगीत दर्शन उत्पन्न होता है उसे क्षायिक संगीत दर्शन कहते हैं, और जो चारित्र मोहनी कर्म के सर्व पर क्षय होने पर उत्पन्न होता है वो क्षायिक चारित्र। इस तरह से ये क्षायिक भाव के भी
भाव
अभी भी जाना जाने करने की वजह से हो रहा है, इसलिए ये भी है तो अभी लोगों के लिए ज्ञान की कमी, ज्ञान का अभाव और ज्ञान की कमी दोनों चीजें हैं। असहयोग भाव में जो है वो कर्म के उदय से होता है, चारित्र में है कर्म के उदय से असहयोग भाव होता है, और असिद्धत्व भाव ये भी समस्त आठ करने के वजह से हर असिद्धत्व भाव है, विराट करने का स्पर्श होता है, पांच सिद्धत्व करने का छह निश्चय है, ये अद्वैत भाव है। इस तरह से इक्कीस जो है वो अद्वैत भाव और उसमें और विशेष चर्चा है कि कौन सा पर्व किस व्यवस्था में पति बना रहेगा, फिर उसके बाद उसके लिए भी चित्ती हो जाएगी, वो बहुत जटिल है, याद रहने वाली चीज कर दो एक एक का इसका जो पहले सब एक एक है मतलब गति चतुर्थ एक एक दशाए चतुर्थ लिंग चय फिर मिथ्या दर्शन एक अदर्शन नहीं मिथ्या दर्शन एक अज्ञान एक असंयम एक और असिद्धत्व एक कई 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 चार बार एक एक है तो कौन से लगा रहे हैं षड क्या है तो निश्चय और अच्छा निश्चय इस तरह से सूत्र में इक्कीस अध्याय भाव की चर्चा जीव भव्या भगवत पाना चाहिए। इस सूत्र में जन्म के तीन कारणामिक भावों की चर्चा की गई है, जीवत्व भव्यत्व और भव्यत्व जीव के असाधारण पारिणामिक भाव है। असाधारण से मतलब जीव नहीं होते हैं अन्य किसी द्रव्य में नहीं होते, वैसे तो ये पांचों भाव जो है वो जीव में नहीं होते हैं, उसके ही स्वतत्व है वही द्रव्य में नहीं पाए जाते, पर जीवत्व बंधित और बंधित जो है वो भी सहज रूप से जीव में होते हैं, किसी कर्म के उदय उपशम क्षण और सुरक्षण की अपेक्षा है नहीं होती है।
Thank you.
समसामयिक और पास्ट, संसारी और रोग वैसे दो प्रकार के रोग होते हैं। संसारी वो है जिनमें से पांच प्रकार का परावर्तन होता रहता है, या पांच परावर्तन भी चलकर संसार विद्यमान है तो संसारी के मानते हैं, और जो इस पांच परावर्तन से या आवागमन चक्र से मुक्त हो रहे हैं वे मुक्त जीव के लाए गए। अब जो संसारी जीव है वे भी दो प्रकार के, उन्होंने जरा क्लासिफिकेशन उसी ढंग से किया है, समरसता और मस्ता। संसारी जीव एक मन सहित है और एक मन रहित है, पर देखिएगा कि मन सहित है वो तो पंचरता में बन रहे हैं, बाकी जितने हैं वो सब मन रहित है। इस तरह से एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है। अब मन किसे कहते हैं? मन सहित जीवन को सागर कहते हैं, उससे कुछ समरस भी कहते हैं, उससे कुछ समय भी कहते हैं। ये तीनों शब्द एक है राष्ट्रीय सूचना देने वाले, अनस का तो बनाने वाले जीव है, उनको असंगी और असंग भी कहते हैं। संगी जीव वो कहलाते हैं जो कि शिक्षा उपदेश और आलाप इत्यादि को ग्रहण करने में समर्थ है, और जो असमर्थ है वो सब असंगी कहेंगे। संसारी वहां पुरुष स्थान है, संसारी जीव का एक और क्लासिफिकेशन है, संसारी ही पुरुष और स्थान है जो ऐसे हो रहे हैं। स्नानकरण का उदय ग्रंथ होता है, वे जो तितरस के रात में हो जाए कि स्थावर ग्रहण करने की वजह से एक ही रात प्राप्त होती है, वे स्थावर हो जाते हैं। स्थावर में पांच भेद है, वो आगे के हैं। पृथ्वी और तेजो वायु वनस्पति है स्थावर, पृथ्वी जल उग्र वायु और वनस्पति ये पांच स्थावर, इनके मात्र एक इंद्रिय होते हैं स्पर्श इंद्रिय, और एक बल होता है काय बल, वायु और श्वास उच्छ्वास। इस तरह देखें तो उनके चार ही प्राण होते हैं, वैसे तो प्राण दस है, पांच इंद्रिय वन वचन काय बल वायु और श्वास उच्छ्वास, यह सब समय प्रतिनिधि हृदय दसों प्राण होते हैं, तो एक इंद्रिय हृदय चार ही प्राण होते हैं, क्योंकि एक ही इंद्रिय है प्राण बल, जैसे एक हो रहे आयु और श्वास उच्छ्वास तो समय रूप से सभी प्राण के लिए। इस तरह वेद को वेद की नादी और दैन्द्रिया दयास्पर्शा, और दैन्द्रिय को आदि लेकर के पहुंचने का जो वर्ग है वो सब त्रस कहलाते हैं, तो दैन्द्रिय के लोग में दैन्द्रिय में पहुंचेंगे। इसमें भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कहीं ग्रहण किया है कि दैन्द्रिय के लोग अगर पहुंचने को विकलांग कहते हैं, और सकलांग में पहुंचने के लिए फिर प्रश्न उठता है कि आप कोई दैनिक्रम परिवर्तन कर रहे हैं तो रास्ता में रहने या सफर है तो कैसे पहुंचेंगे? पढ़ रहे हैं तो पहुंचे होते हैं, पर वो इंद्रियां दो प्रकार की होती है, दैविक है द्रव्येंद्रीय और भावेंद्रीय, ऐसे दो प्रकार की होती है। इसमें से निर्वृत्ति उत्तरा है द्रव्येंद्रीय और मध्य प्रवीण भावेंद्रीय, निर्वृत्ति अर्थात रचा और उत्तरण अर्थात उसके सहायक सहायक तत्व वो कहलाएंगे उपकरण, तो निवृत्ति और उपकरण ऐसे तो कहलाते हैं वृद्धि, कर्म के द्वारा जो होने वाला रचा विशेष है वो कहलाता है वृद्धि। निवृत्ति भी आभ्यंतर और बहिर दोनों प्रकार की होती है, वो आत्मा के प्रदेशों में इंद्रियों के आकार की रचना होती है, वो तो अभ्यंतर कहलाती है, वो तो नहीं दिखाई देती, राख है तो आपके भीतर उस आकार में पहले आत्मा के प्रवेश अरेंज हो जाए, फिर बाद में भी बाद में जो रचना हुई है बाह्य वृत्ति, तो जो गोलक है और ज्योतिष है वो रचना है, ये सब चरण में बाह्य वृत्ति जो रचना है उस आंख की शेप की रचना। अब उसमें जो हेल्पफुल है जो उसके सहायक है वे सब उपकरण के हैं, उपकरण में भी दो प्रकार के हैं, वैसे अभ्यंतर उपकरण अंदर का और एक बाह्य। अभ्यंतर उपकरण तो वो कहलाएगा नेत्र के बीच में जो काला और स्वेद भोजन है जिसके माध्यम से तो देखते हैं, जो देखने में सहायक होता है वो अभ्यंतर, यानी बल्कि इत्यादि वो सब बाह्य उपकरण है। तो जब ये चक्षु इंद्रिय घर के लिए हुआ इसी तरह से पांचवें इंद्रिय घर के लिए लगा लेंगे वो उपकरण घर में, जैसे कि कौन किसी की नहीं
तो वो क्या आत्म प्रदेश तो हो रहे हैं,
वह आत्म प्रदेश है बेहतर दृष्टि तो उसकी है। वायु में जो उपकरण है वो डिफेक्ट आ गया, तो कई बार वायु उपकरण ठीक कर देने से रोशनी आ जाती है, और कई बार जो है वायु उपकरण ठीक होने पर भी अंतरण स्पष्ट रूप से नहीं आ जाते और
सब कर्मों का एक है
जो सब कर्मों का
जैसे उसने मेरे बंदे रखी है
अब दो में से एक एप्रेट सही ऐसा भी होगा है। तो इसका मतलब अंतरण में भावेंद्री तो है लेकिन एप्रेटस और रचना ठीक नहीं हुई,
मतलब उसके अंदर चिंता तो है लेकिन उसका उसमें
वर्गीकरण उसका नहीं हो पा रहा है। भावेंद्री का स्वरूप क्या है, उपलब्धि का जो भावना है उपलब्धि और उपलब्धि जो है वो भावेंद्री व्यक्ति किसे कहते हैं, तो गाना वर्णा करने के रूप से उससे उत्पन्न होने वाले समस्त पहले लक्षण के लिए ये सामान्य रूप से लब्धि के होने पर ही वैद्य के द्रव्यों की रचना होती है। जब तक उसके पास वो समय है तब तक वो अपने ऑपरेटर्स कैसे बनाएंगे,
उसका भाव अंतरण
भावतरण में तब तक लब्धि के रूप से आत्मा जाने देखे या स्पष्ट करने सबके समस्त वो पड़ी रहती है। और जब लब्धि के रूप से हम आत्मा के द्वारा उस किसी वस्तु को जानने का फिर छोड़ते हैं तो वो परिणत होती है। देखने की शक्ति तो है पर उपयोग अगर दूसरी तरफ है तो फिर वो सामान्य स्थिर वस्तु को भी नहीं देख पाता है। इसलिए ये लब्धि और उपयोग दोनों में इतना अंतर है, लब्धि तो भीतर पड़ी हुई है पर हमारा उपयोग करने में लगा है तो दूसरे से कोई भी चीज सामने आती है और उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। इस तरह से ये रहना चाहिए। इंद्रियों के पांच इंद्रियों का अर्थ है और उनके जो भी प्रति के रंग भावेंद्री पर भावेंद्री भावेंद्री पर दो प्रकार के इंद्रियां कितनी होती है, उनकी संख्या क्या है, तो कहते हैं और ये पांच इंद्रियों उनके बारे में बता देते हैं। स्पर्श दर्शन ग्रहण चक्षु श्रोता ये पांच इंद्रियां, ये पांचों इंद्रियां दोनों रूप होते हैं भावेंद्री होती है भावेंद्री होती है। अब इन इंद्रियों के अपने विषय क्या है, क्योंकि इंद्रिय जो है वो अपने परिमित विषय को ही और निश्चित विषय को ही जान पाती, एक सीमा में और निश्चित विषय को ही जानेंगे। आंख के द्वारा इंद्रियों को तो उस तरह नहीं देख सकते और आंख सिर्फ देखने का काम कर सकते हैं, दंड और इत्यादि का काम कर सकते, यही उसकी लिमिटेशन है। कह रहे हैं कि इंद्रिय का जो विषय है अलग अलग इंद्रिय का कौन सा विषय है, स्पर्श रस दंड वर्ण शब्दास्त्र है। स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श है, रचना इंद्रिय का विषय रस है, रोण इंद्रिय का विषय गंध है, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप है और श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द है। इस तरह से ये इंद्रियों के पांच विषय और ये अपने अपने विषय को जान पाते हैं कि हमें दूसरे इंद्र के विषय को ग्रहण कर सकते हैं। श्रोतम इंद्रिय वह इन पांचों इंद्रियों के विषय है, अर्थ का विषय ये अलग अलग पांचों इंद्रियों के विषय है। श्रोतम अनिंद्रिय अनिंद्रिय कहते हैं उनको, श्रुत ज्ञान का विषय भूत पदार्थ मन के द्वारा ग्रहण होता है, शुद्ध ज्ञान का विषय भूत पदार्थ भी मन का विषय है। अब पांचवें इंद्रिय का विषय तो मैंने पता दिया लेकिन अहंता का विषय है, प्रमण का विषय तो जो है शुद्ध ज्ञान का विषय भूत पदार्थ, शुद्ध ज्ञान का होना प्रमण का बहुत कार्य है। अब ये बात अलग है कि एक इंद्रिय इत्यादि के शुद्ध ज्ञान तो होता है पर वह मान्य है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान को सूर्य के लिए विदेश विषाद का अनुभव करते हैं, ये दोनों दो ज्ञान हो सकते हैं उनके ज्यादा न हो रविंद्री केंद्र है अपने बचाव से जो अक्षम होती है और मति ज्ञान का कारण शुद्ध ज्ञान उसे खेलना और धर्म जाने पर मेरे अनुकूल है और प्रतिकूल है और मन से
अपने को होता नहीं है, ऐसा पावर छूट जाए और उसे थोड़ा या ग्रहण करने वाले भी कैसे
विज्ञान तो है कि
और मन दोनों के द्वारा होता है, ग्रह के मन नहीं होता है कि हमारे समाधान का अपना मन है और शुद्ध ज्ञान भी वहां रहेंगे राम समाधान का होता है, ग्रह के मन में और के हर के समाधान शुद्ध ज्ञान तो हो गए। पर यहाँ विवक्षा दूसरी है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान का वर्णन हमारे का प्रयोग कर तो शुद्ध ज्ञान में प्रवर्त होता है विशेष कहते हैं वनस्पतियों का नाम लेता वो जो आपने स्थावर वेदों की चर्चा की थी पृथ्वी काल से लेकर के वनस्पति काल की पौधे कितनी उम्र होती है ना बताया तो सूत्र हो गया कि पृथ्वी काल से लेकर वनस्पति काल पर पांचों स्थावर वेदों के एक भाग स्पर्श होती है तो फिर आगे की उदाहरण के कौन कौन स्थावर है तो कमी पृथ्वी का भ्रमण मनुष्य आगे नाम लेते हैं कमी आदि से अधिक होती चली जाती है कमी जो लक्ष्य जो प्रत्यादि है वो स्पर्श वस्तु और प्रतियोगिता का अर्थ होता है चीटी खत्म होगी इससे आ जाता है अभी होगी स्पर्श वस्तु ग्रहण होता है ग्रहण होती है द्वारा द्वारा सेवा द्वारा मक्खी द्वारा स्वच्छ रखता है ये सब में स्पर्श वस्तु द्वारा चक्षु विचार वगैरह होते हैं वर्ष आदि में वर्ष पशु पक्षी वगैरह आचार ग्रहण करते हैं। अब समझना समझता
है कैसे बढ़ती
है एक 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 की बद्धि अपने क्रम से होती चली जाती है उदाहरण के हिसाब से और इंद्र के एक एक कैसे बढ़ा वही क्रम भी होंगे इससे शो कर दिया कि ऐसा नहीं है कि जिसके दो अंगे हैं तो उसके स्पर्श और शोध ही हो जाए और दो अंगे हैं तो स्पर्श और स्पर्श में हो जिसके ग्रहण अंगे हैं तो उसके अंदर उसके दो और हैं पिछले वाली स्पर्श और वस्तु तो उसके ग्रहण आई है ऐसा नहीं कि ग्रहण और चक्षु के अंदर और स्पर्श और वस्तु है ये मैं बताने के लिए संगीना समझता और उसे सही प्रभावों को संगत करते हैं वैसे रहे प्रदेशों को ऐसे रहे प्रकार स्थान पर आया एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री ये तो सब असंख्य होते हैं लेकिन जो पंचेंद्रीय है देवनार्की और महर्ष है ये तो सभी होते हैं तिरंग जो है सभी और सभी दोनों प्रकार के होते हैं। मन की एक परिभाषा और बनाई है कि हित और अर्थ का विवेक जिसके द्वारा होता है उसे रहे का कार्य है तो आप तो विवेक कर
शरीर की रचना के लिए ग्रहण करता है तो उसकी क्या स्थिति होती है इस बात के लिए आवश्यक है। ये पूरा अधिकार जीव के बारे में ही है, जीव को डिफाइन किया, जीव का क्लासिफिकेशन भी किया और उसके ट्रांसमाइग्रेशन आवागमन के बारे में विचार किया है। तो 25वां सूत्र है विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गति में जब नए शरीर की रचना के लिए जीव जन्म करता है तो वहां पर सिर्फ कर्म का योग होगा, ये सूत्र का कहना है। अब जारा शरीर ही आता है कर्म शरीर आता है
विज्ञान शरीर तो यही रह जाता है,
तेजस और कर्मन दोनों साथ
में okay, पूरे जाता है
तेजस और कर्मन दो शरीर तो
जाते
साथ में जाएंगे
तो तेजस रह जाता है हमारा,
तेजस का योग नहीं रहता। कर्म योग लिखा है इसलिए कर्मन शरीर की गहरी मुख्यता यहाँ पर दी गई है, इसीलिए कर्म शरीर के द्वारा जो आत्मा के प्रदेशों का प्रस्पंदन है उसे कर्म योग का, तो मुख्यता यहाँ पर कर्मन काय योग की है, तेजस की मुख्यता नहीं है पर वो कर्मन शरीर के साथ अंग्रेजी रहते ही
है जाते ही।
हाँ वो दो शरीर तो जिसके अनुसार बने रहते हैं, ये कह रहे हैं कि विक्रय गति में, विक्रय के माने होता शरीर, विग्रह के माने होता शरीर, एक अर्थ है विग्रह का शरीर, एक अर्थ है मोड़े वाली गति। तो पहले अर्थ के अनुसार तो ये निकलेगा कि मोड़े शरीर की रचना के लिए जो गति जीव करता है उसे विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति दो प्रकार की होती है, एक तो सीधी और एक मोड़े वाली। तो सीधी गति को ऋजु गति या इशु गति कहते हैं और मोड़े वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति ही दो प्रकार की है, उसमें से एक विग्रह गति एक ऋजु गति। विग्रह के माने वहां पर शरीर है। तो जब जीव अपना एक शरीर छोड़ करके और दूसरे शरीर की संरचना के लिए जाता है तो वो गति उसकी विग्रह गति कहलाती है, और उस विग्रह गति में कारण कर्म काल योग रहता है वहां पर, इसलिए उसको कर्मयोग कहा है। इस कारण योग के द्वारा ही जीव जो है नवीन कर्मों को ग्रहण करता रहता है और मृत्यु स्थान से अपने जन्म लेने के स्थान तक भी चला जाता है, और भी दूसरे गत्यानुकूल भी नाम कर्म है उन सबका उदय रहता है, प्रमुख रूप से कारण काल योग रहता है, उसमें सब आ जाते हैं गत्यानुकूल वगैरह कर्म। लेकिन इस समय वो अपने नए शरीर के लिए कोई भी वर्गनाएं इस विग्रह गति के दौरान ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसे इस विग्रह गति के दौरान अनाहारक कहा जाता। ये बाद में क्लियर करें, अनुश्रेणी गति, ये जो उसकी विग्रह गति है वो आकाश की पंक्ति के अनुसार होती है। अनुश्रेणी गति लोक में मध्य से लेकर के ऊपर नीचे क्रिया जिस दिशा में भी जाएगा वो आकाश की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं, उस आकाश की पंक्ति के अनुसार ही जाएगा। क्या है कि प्रदेशों की आकाश में पंक्ति बनी हुई है तो उसके अलाउंग ही जाएगा, ऐसा नहीं कि जिगजैग या किसी भी तरह से निकल जाएगा, जो भी हर दिशा में पंक्ति बनी है, इस दिशा में जाना है तो ऐसे सीधे जाएगा, जिस दिशा में भी जाना है वहां पर जो आकाश के प्रदेशों की एक लाइन है डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ही वो जाएगा,
मतलब उसको क्रिस क्रॉस करके नहीं जाएगा, जो उसकी डायरेक्शन है जो मिल जाए
जो उसकी शैली है उसके अनुसार जाए। विग्रह वाली गति के अलावा और भी गति होती है क्या? यमुक्त जीवों की कौन सी गति है? ये तो संसारी जीवों की गति की चर्चा होगी, कहते अभिग्रह जीव। विक्रय अर्थात मोड़े से रहित गति मुक्त जीवों की होती है, उसे ऋजु गति भी कहते हैं। मुक्त जीव जो है वो श्रेणी के अनुसार ऊपर गमन करके एक समय में जो है सिद्धि से लगभग पहुंच कर वहां ठहर जाते हैं, इसलिए सीधी गति मानी गई उनकी, उसको अभिग्रह गति भी कह सकते हैं या कि इशु गति भी कह सकते हैं। इशु का मतलब होता है या ऋजु का मतलब होता बाण के समान, जैसे बाण धनुष फूटा उसी बार जाके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है उसी तरह से, और विग्रह के मायने होता मोड़ा, तो कोई ना कोई कर्व टर्न लेगा या फोल्ड लेगा तो वो विग्रह गति। विग्रह गति जो संसारी ना प्राप्त करते, संसारी जी चार समय से पहले मोड़े सहित गति करता है या मोड़े वाली जो गति विग्रह गति है वो संसारी जी चार समय में संपन्न कर लेता है, चौथे समय में तो वो जाकर के अपने नए शरीर को ग्रहण करने लगता है। एक मोड़े में दो समय लगते हैं, दो मोड़े में तीन समय लगते हैं, तीन मोड़े में अधिकतम चार समय लगते हैं। तो ये इनका कहना है कि प्राग चतुर्थ्या चार समय से पहले मोड़े से युक्त गति होती है संसारी जीवन की, सीधा अर्थ यह हुआ।
आशा ये है कि एक मोड़े वाली गति में दूसरे समय में जन्म स्थान पर पहुंच जाएगा, दो मोड़े वाली गति में तीसरे समय में जन्म स्थान पर पहुंच जाएगा, तीन मोड़े वाली गति में चौथे समय पर अपने जन्म स्थान पर पहुंच जाएगा। इसीलिए कहना पड़ा कि संसारी जीव की जो गति मोड़े वाली है वो अधिकतम तीन मोड़े वाली और चार समय
समय मतलब माइंडेस्ट
टाइम का सबसे होना चाहिए छोटा
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड
छोटा एक समय विग्रह। लेकिन जो ऋजु गति होती है या विग्रह से रहित सीधी गति होती है वो सिर्फ एक समय वाली होती है, यहां से निकल के अगले समय में वो अपना शरीर ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह अपन देखें तो मुक्त जीवों की तो एकमात्र सीधी गति होती है, लेकिन संसारी होने लगा तो एक समय में हुआ। लेकिन संसारी जीवों की दो तरह की है गमन करने की, विग्रह गति भी और ऋजु गति भी, मोड़े वाली गति भी और सीधी गति भी। एकम दो तीन बार नहा होता, जिस समय जीव विग्रह गति में होता है उस समय वो एक समय दो समय या तीन समय के लिए अनाहारक रहता है। एक मोड़े वाला जीव दूसरे समय पहुंच जाएगा तो वो एक समय अनाहारक रहा, दो मोड़े लेकर के पहुंचा है तो तीसरे समय पहुंच गया, यानी दो समय अनाहारक रहा, तीसरे समय उसने आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया। आहार ग्रहण करने से मतलब है अपने अवारिक व्यक्रियक आदि शरीरों की रचना के लिए खुदगल वर्गनाएं ग्रहण करना, इसका नाम है। बॉडी कंस्ट्रक्शन के लिए जो मैटर इकट्ठा वो करता है उसको आहारक बोलते हैं, और जब तक वो ग्रहण नहीं करता है सिर्फ कर्म उसके साथ है और कुछ नया वो ग्रहण नहीं कर रहा, कर्म तो ग्रहण कर रहा है लेकिन शरीर के बनाने के लिए कोई भी मैटर वो ग्रहण नहीं कर रहा है, वो अनाहारक अवस्था कहलाती है।
मुंशी महाराज जी उसके पास मीडियम तो है जैसे वायु है, तो वायु से वो ग्रहण तो कर सकता है
लेकिन उसने अब जब तक वो जन्म स्थान पर नहीं चलेगा तब तक अपने शरीर को कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा। तो विग्रह गति में जीव एक समय दो समय या तीन समय तक अनाहारक रहता है, क्योंकि तीन मोड़े में तीन समय लग जाएंगे और चौथे समय में वो वहां अपने शरीर की रचना करेगा तब वो आहारक हो जाएगा। तो एक मोड़ा लेकर उत्पन्न हो रहा है तो एक समय तक अनाहारक रहेगा, दो मोड़े लेकर उत्पन्न हो रहा है दो समय अनाहारक रहेगा, तीन मोड़े लेकर हो रहा है तीन समय अनाहारक रहेगा, चौथे समय जरूर से आहार ग्रहण कर लेगा। अब जो इनके जन्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं जीवों के, संसारी जीवों के, इसके लिए सूत्र है सम्मूषण गर्भोपवादा जन्म। जन्म तीन प्रकार का है, सम्मूषण जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। सम्मूषण जीव तो वो है कि तीनों लोकों में सर्वत्र बिना किसी माता पिता की सहायता के संबंध के सब तरफ से उद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करके जो शरीर की रचना होती है, जो जन्म होता है उसे सम्मूषण या स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहेंगे। माता पिता के उदर में माता पिता के संबंध से और जो शरीर की रचना होती है उसे गर्भ जन्म कहते हैं, और जहां पर जाते ही एक अंतर्मुख में पूर्ण शरीर बन जाता है ऐसे देव नारकियों के जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं। इस तरह संसारी जीवों का जन्म तीन प्रकार से होता है, लेकिन इनके जन्म के स्थान अलग अलग ढंग के होते हैं। जन्म तो इतने प्रकार का हो गया तीन प्रकार का, लेकिन अब जन्म के स्थान कई प्रकार के हैं जिसको कि योनि कहते हैं। जन्म स्थान का नाम योनि है, वो कह रहे हैं कि योनि कम से कम 9 प्रकार की तो है, बाकी 84 लाख योनियां वो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन यहां मुख्य रूप से उनके जन्म स्थान के अपेक्षा से 9 प्रकार की बताई। सचित्त शीत संकता सेतरा निश्वास चैतस्यु नया, सचित्त योनि है, शीत योनि है, संवृत योनि है, और सेतरा अर्थात उससे विपरीत है, अचित्त है, उष्ण है, विप्रत है, और इन तीनों के मेल से मिश्र यानी सचित्त अचित्त शीत उष्ण और संवृत विप्रत, ये इस तरह से योनियों के भेद हो रहे हैं। इनके उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं, जो योनि सचित्त है अर्थात चेतना से युक्त है वो तो सचित्त योनि कहलाएगी, लेकिन जो अचित्त योनि है जहां जीव नहीं है किसी जीव का संचार तो वो कहलाएगी अचित्त योनि, और दोनों की मिली हुई अवस्था है मान लो सचित्त भी है और अचित्त भी है तो वो सचित्त अचित्त योनि कहलाएगी। शीत स्पर्श हो तो शीत योनि कहलाएगी, उष्ण स्पर्श हो तो उष्ण योनि कहलाएगी, और दोनों की मिली हुई अवस्था शीतोष्ण है। संवृत के मायने होता है ढका हुआ,
अगर उत्पत्ति स्थान ढका हुआ है स्पष्ट दिखाई नहीं देता तो वो संवृत प्रकार की योनि है, और अगर उत्पत्ति स्थान ओपन खुला हुआ है और जीव एकदम हमारे देखते देखते वहीं खुले में उत्पन्न हो जाते हैं तो वो कहलाता है विव्रत, और आधी ढकी कुछ खुली हुई भी है तो संवृत विव्रत कहलाएगी। इस तरह से ये योनि स्थान की चर्चा है। योनि और जन्म में इतने ही भेद है कि योनि तो आधार है,
उधार में जाकर
हाँ, और इसमें जाकर के जीव जन्म लेता
है,
आधार आदि का भेद जो है इन दोनों में होता है। तीनों प्रकार के जन्म जो है वो इन नौ प्रकार की योनियों में होते हैं, इस तरह से भी आए। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल दिया है। गर्भजन्म वालों की योनि तो सचित अचित शीत उष्ण और शीतोष्ण तथा संप्रत विप्रत है। संयोषण जन्म वालों की योनि सचित अचित सचित अचित शीत उष्ण और शीतोष्ण। विशेष ये है कि तेजस का एक जीव जो होते हैं उत्पन्न होती तो उष्ण योनि होती और एक इंद्री की संप्रत ढकी हुई, लेकिन जो विपिनेन्द्री है उन सबकी खुली, दो इंद्री से लेकर चार इंद्री तक एकदम देखते देखते कैचुए इतनी तादाद में सामने देखते हैं पैदा हो जाते हैं, वो सब विप्रत योनियां हैं। ये नौ योनियां हैं, विस्तार से इन्हीं की फिर 84 लाख योनियां बन जाती हैं। अब किस प्राणी का किस तरह का जन्म होगा ये बता रहे। जरायु जानदस पोता नाम गर्भ, गर्भ जन्म जो होता है वो तीन प्रकार के प्राणियों का गर्भ जन्म होता है, जरायुज प्रकार के, अंडस प्रकार के या पोतस प्रकार के, या इसको गर्भ जन्म के तीन भेद भी कह सकते हैं। जन्म के समय माने गर्भ से जन्म लेते समय अगर प्राणी के ऊपर जाल की तरह मांस और रक्त का एक जाल हो तो इस प्रकार के जन्म को जरायुज कहते हैं, जो कि मनुष्यों के होता है, पशुओं के भी होता है। और जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं वो सब अंडज कहलाते हैं, वो भी गर्भ के द्वारा ही हुए हैं, उत्पन्न कबूतर आदि पक्षी हैं उनके अंडे होते हैं। और जिनके माने कोई आवरण नहीं होता जिनके ऊपर, और जो योनि से बाहर आते ही साथ थोड़ा दौड़ने लगते हैं ऐसे हिरण वगैरह का ये जन्म पोतज है, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता और वो बाहर आते ही चलने फिरने में समर्थ हो जाते हैं, ये पोतज जन्म कहलाते हैं। इस तरह से ये तीनों गर्भ जन्म के ही प्रकार है, तीन तरह से गर्भ जन्म हो सकता है। तो उत्पाद जन्म के बारे में क्या है तो उसके उत्तर में कहते हैं कि देव नार का नाम उत्पाद है, देव और नार की जीवों के तो उत्पाद जन्म ही होता है। शेषानाम समूषण, इसके अलावा जो जीव बचे उन सबका समूषण जन्म होता है। गर्भ जन्म वाले मनुष्य पर्यंत और उत्पाद जन्म वाले देव नार की के अलावा जितने भी एक इंद्री विपिनेन्द्री हैं और संगी पंचेंद्री त्रियंश हैं उन सबका संयोषण जन्म।
यदि भोपाल में भी अलग महाराज जी थे, उनके किताब में लिखा था कि मनुष्य भी
संयोषण जन्म वाले होते हैं कदाचित,
ठीक वैसा होता
होता
है। अभी आजकल देखने तो कहीं
दिखाई नहीं पड़ेगा, कैसे दिखाई पड़ेगा।
अच्छा वो मतलब उनकी
इसमें लिखा हुआ है कि अपने मलमूत्र में पसीने में इसमें विशेष रूप से महिला के इसमें यहाँ बाली में हाँ हो गए, तो ये समोषण जन्म। और उतनी दो मिनट की उनकी आयु रहती उतने में वो मनुष्य के आकार की छोटी संरचना और मरण को प्राप्त हो जाती है, जन्म के मरते रहते
जो छोटे होते हैं छोटे
हैं मनुष्य कहने के लिए संगीत पंचेंद्री मनुष्य, लेकिन वो अपनी अत्यंत अल्प आयु की वजह से हमारी पहुंच के बाहर रहते हैं। तो इस तरह से तीनों प्रकार के जन्म की चर्चा हो, लेकिन उन जन्मों के द्वारा कितने प्रकार के शरीर प्राप्त हो सकते हैं जीव के, उन शरीरों की भी चर्चा करते हैं। औदारिक वैक्रिय का आहारक तेजस कार्मणानी शरीर है, पांच प्रकार के शरीर औदारिक यानी स्थूल शरीर को औदारिक कहते हैं, और जो नाना प्रकार के रूप बनाए जा सके जिसके द्वारा छोटे बड़े हल्के भारी इत्यादि वो वैक्रिक शरीर कहलाता है। और छठे में स्थान व्यक्ति जो मुनि महाराज जब उनको किसी सूक्ष्म पदार्थ को जानने की जिज्ञासा होती है तब फिर वो केवली शुद्ध केवली के पास भेजने के लिए जिस शरीर की रचना करते हैं उसे आहार शरीर कहते हैं। तेजस शरीर तो शरीर सभी प्रकार के शरीरों को कांति देने वाला तेजस शरीर है, जो हमेशा जीव के साथ रहा आता है और जाना बना भी आठ कर्म के समूह को कारण शरीर के हैं।
मैं भी वो मुझे महाराज क्षतिग्रस्त हो जाती क्या करना
क्षतिग्रस्त आहार शरीर बनाने वाले
होते ना जी। अभी पंचम काल में जैसे नहीं होते
छठे साधनों का स्थान तो होता है।
अच्छा नहीं
लेकिन आहार वृद्धि नहीं होती।
हाँ ये आहार वृद्धि नहीं
है
ऐसे संभव है।
आज पंचम काल
प्रसिद्ध काल के प्रभाव से बट जैसे छठे वन स्थान जो मैंने मारा भी
ना सबको आहार की वृद्धि उनके हो सकती है विशुद्धि के कारण तैयस वृद्धि भी हो सकती है। ये आहार वृद्धि और तैयस शरीर और इनमें थोड़ा सा फर्क है। आहार शरीर और आहार
वृद्धि आहार वही है दो फिट का वो कह रहे हैं दो हाथ का
एक हाथ
एक हाथ का और वो वृद्धि
कितना निकलता है
जो उनका ज्ञान आ जाता है तो फिर वापिस तो ये शरीर को वो अपने जो
वो तो एक तरह का प्रोजेक्शन है।
हाँ
वो क्रोध आदमी जिसको कहते हैं या कि करना पूर्वक या तो दया भाव से या कि क्रोध भाव से दोनों स्थितियों में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के तेजस निकलते हैं। वो एक तेजस समुद्रात या तेजस शुद्धि अलग चीज है। ये जो हरेक शरीर के भीतर उसको कांति देने वाला या खाए हुए अन्न को पचाने वाला जैसाग्नि रूप जो तेजस शरीर है वो तो अंदर है उसको इसलिए उसको अमिश्रणात्मक तेजस कहते हैं और जो बाहर निकलता प्रोजेक्शन की तरह उसको मिश्रणात्मक कहते हैं। अब मिश्रणात्मक में भी शुभ और अशुभ दोनों ये है उसकी चर्चा। परम परम सूक्ष्म औदारिक से लेकर के कामान शरीर तक ये शरीर क्रम क्रम से सूक्ष्म होते चले जाते हैं। तदेस्तु संकीर्णम प्राप्त तेजसा परमाणुओं की अपेक्षा या प्रदेशों की अपेक्षा देखा जाए तो तेजस से पहले तक के शरीर सब असंख्यात असंख्यात गुणे होते हैं। अर्थात औदारिक शरीर में जितने परमाणु उससे असंख्यात गुणे परमाणु वैक्रिक शरीर में वैक्रिक शरीर से असंख्यात गुणे परमाणु आहारक शरीर के और अनंत गुणे परे आहारक शरीर से तेजस शरीर के अनंत गुणे परमाणु हैं और तेजस शरीर से कार्बन शरीर के अनंत गुणे परमाणु हैं। लेकिन परमाणु अनंत गुणे होते हुए भी सूक्ष्मता उनकी निरंतर बढ़ती चली जाती जैसे कि हुई में हर एक किलो के बाट में कितना फर्क है एक किलो हुई और एक किलो बाट वो बाट जो है उसमें प्रदेश अधिक बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन उनकी कॉम्पैक्टनेस की वजह से सूक्ष्मता बहुत आती चली जाए और रुई के इतने सारे ढेर में उतनी कॉम्पैक्टनेस नहीं है। तो आधारित शरीर तो रुई के ढेर के समान समझिएगा और वो और अधिक सब शरीर जो है सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं। उनमें प्रदेह परमाणुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी अप्रतिघातक। लेकिन जो अंत के दो शरीर हैं तेजस शरीर और कार्बन शरीर वे अप्रतिघात हैं। अप्रतिघात अर्थात दूसरे से बाधित नहीं होते ना दूसरे को बाधा पहुंचा सकते वो एक तरह से
ट्रांसपेरेंट करके नष्ट नहीं हो सकते किसी कारण।
हाँ
घात नहीं हो सकते
सबसे बड़ी चीज की वो एक दूसरे इंटरफेयर नहीं कर पाते। वो इस दीवार से पार हो जाए तो उसको ना दीवार को कोई फर्क पड़ने वाला ना उनको कोई फर्क पड़ने वाला। वज्र से भी वो इधर वज्र में पतंग से भी नहीं रोके जा सकते। यहाँ हम खुद का बोल रहे कि उनकी इतनी सूक्ष्मता होती है कि वे इन सब चीजों से बाधित नहीं होते। जैसे कि अपन एक्सरे मान के चले तो वो प्रवेश कर जाते हैं पता भी नहीं
लेसर वगैरह
तो इस तरह अनादि संबंधित। और ये जो दो शरीर अंत के हैं तेजस और कार्बन शरीर इनका जीव के साथ अनादि काल से संबंध लगा हुआ है। मुक्त होने पर ही जीव इन शरीरों से
संसारी जीव के लिए
हाँ और सर्वस ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं किसी भी अवस्था में। पदादीनी भाज्यानी युक्तवे कस्मिन्ना चतुर्भ्य अगर देखें तो तेजस और कार्बन शरीर को लेकर के एक जीव के एक समय में अधिकतम चार शरीर हो सकते। तेजस और कार्बन शरीर तो रहेगा तो विग्रह गति में भी जीव के साथ रहेगा। विग्रह गति के अलावा अन्य अवसर पर जो मनुष्य चयंत हैं उनके औदारिक शरीर भी साथ में रहेगा। तो औदारिक तेजस और वैक्रिय औदारिक तेजस और कार्बन शरीर अगर छठे गुण स्थान मृत्यु मुनि महाराज करते हैं आहारक शरीर की रचना तो उनके औदारिक आहारक तेजस और कार्बन शरीर बन जाएंगे। अगर वैक्रिक शरीर